समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान गणेश आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए, इसी कामना के साथ नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु।
नमस्कार मनोज, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड डियर लिसनर्स, As always, our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we are going to give you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 28th of August. But before all that, let's begin with the news first, Manoj.
Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री की ये 8वीं जापान यात्रा है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनकी ये पहली शिखर बैठक होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोलेगी। राजदूत जॉर्ज ने कहा कि ये उच्च स्तरीय बातचीत भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूती देगी। एक रिपोर्ट।
जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज ने कहा कि विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है और भारत जापान के बीच संघर्ष का कोई इतिहास नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध द्विपक्षीय के साथ ही बहुपक्षीय भी है।
इंडिया एंड जापान इट इज स्पेशल बिकॉज इट इज स्पेशल, इट इज ए पार्टनरशिप, इट इज स्ट्रेटेजिक एंड ऑल्सो इट इज ग्लोबल, इट हैज बोथ बायलैटरल एंड प्लूरिलैटरल एस्पेक्ट इन इट।
जापान में भारत के राजदूत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत अमृतकाल की यात्रा के मध्य में है और ये यात्रा भारत को एक विकसित देश बनाने की है जिसमें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा होगा। उन्होंने कहा कि जापान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भारत के साथ काम कर रहा है। जापान भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए भी काम कर रहा है।
Japan has always been a partner for India in its manufacturing sector. As I mentioned, automobile sector, it got transformed with the arrival of Japanese companies some 40 years back, the Suzuki company, and now it has been transformed.
भारत की अमृतकाल यात्रा में जापान एक प्रमुख और विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की तरह अन्य विनिर्माण क्षेत्र भी प्रगति कर रहे हैं। टोक्यो से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
दूसरे चरण में प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानचिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी उम्मीद है। भारत वर्ष 2017 से एससीओ का सदस्य है।
And Manoj, you know what, the next two stories are going to be on this year's monsoon, as it is raining records. And we are seeing never before record breaking moments, as this is not just another spell of rain. तो the Indian Air Force has launched extensive relief and rescue missions in response to the rising water levels and devastating floods caused in Jammu region and Northern Punjab. The Defence Ministry in a statement said the Indian Air Force has deployed helicopter fleet, transport aircraft and other IAF assets for the support of the affected. It also pointed out about the rescue missions done in Akhnoor area of Jammu, Pathankot and Dera Baba Nanak area of Punjab to rescue and safeguard the life of armed personnel. The ministry said the IAF stands ready to undertake further missions as the situation evolves. Meanwhile, Northern Railway has cancelled 45 trains and short terminated 25 trains due to heavy rains in Jammu region. Chief Public Relations Officer of Northern Railway, Himanshu Shekhar, informed about the decision while talking to media in New Delhi.
उत्तर रेलवे द्वारा 45 के आसपास ट्रेन्स का कैंसिलेशन किया गया है और 25 से अधिक ट्रेन्स को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है. हेल्पलाइन या हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है. कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. जैसे दिल्ली का हेल्पलाइन नंबर है 9717638775 और जम्मू का हेल्पलाइन नंबर है 7888839911.
And the National Disaster Response Force, NDRF, carried out large-scale rescue and evacuation operations in Kangra and Chamba districts of Himachal Pradesh. It rescued over 3,700 people in the last 2 days amid adverse conditions. In Chamba district, an NDRF team deployed for the ongoing Shri Mani Mahesh Ji Yatra launched a major evacuation effort on August 27. The team, along with HP police and civil officials, set up a temporary footbridge to facilitate pilgrims in Dhancho area near Gaurikund. It evacuated 3,269 pilgrims to Dunali.
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने देश भर के स्कूलों से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए समय पर आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने को कहा है. प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इससे संबंधित शिविर आयोजित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि UIDAI और शिक्षा मंत्रालय ने लगभग 17 करोड़ बच्चों के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म पर आधार में लंबित अपडेट को सुगम बनाने के लिए भी सहयोग किया है. यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली है और स्कूली शिक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्र करती है. प्राधिकरण और स्कूली शिक्षा विभाग की इस संयुक्त पहल से बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट को आसानी प्रदान करने में काफी सहायता मिलने की संभावना है. प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 11 वर्ष हो गए हैं. ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी. 28 अगस्त को कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को गरीबों की दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव बताया था. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्र मिशन है. इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना है और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है. प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रत्येक परिवार के लिए एक बुनियादी बैंकिंग खाते, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तथा बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच के लिए एक मंच प्रदान करती है. किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र आउटलेट में शून्य शेष राशि पर खाता खोला जा सकता है. प्रत्येक बैंक खाता बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है. अनुपम मिश्र के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
And now, dear listeners, let's go on to the world of sports and hear what Jagyasa has to give information on sports.
The Union Cabinet has approved India's bid to host the Commonwealth Games 2030 in Ahmedabad, Gujarat. The Narendra Modi Stadium, having successfully hosted the 2023 Cricket World Cup final, will be a key venue. The games are expected to boost tourism, create employment across multiple sectors, and inspire widespread sporting participation nationwide. In badminton, India made a strong showing at the BWF World Championship 2023. 25 in Paris. Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty advanced to the round of 16 after defeating Chinese Taipei Liu Enyang. PV Sindhu overcame a tough challenge from Malaysia's Letsana, while Dhruv Kapila and Tanisha Krasto cruised past their Irish opponents. HS Pranoy and the mixed pair Rohan Kapoor and Rutvika Shivani Gadde are set to play today. In the under-17 Women's SAFF Championship in Thimphu, India continued their dominance defeating hosts Bhutan 5-0. Anushka Kumari starred again with two goals and an assist, taking India's goal tally to 22 without conceding any goal. And at the US Open Tennis Tournament, Novak Djokovic defeated American Zachary Swaida in straight sets. In women's singles, Naomi Osaka and Mira Andreeva also progressed with straight set victories. With Mayur Jain, Jigyasa Pandey, Sports Desk.
Thank you, Jigyasa, for the sports roundup.
और अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का.
जी, एंड आई विल बिगिन विद चेन्नई मेट्रो. मनोज, अ हाई लेवल डेलीगेशन ऑफ 26 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 6 जापानीज कंपनीज विजिटेड अना यूनिवर्सिटी, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू लर्न जापानीज लैंग्वेज एंड कल्चर टू लॉन्च ग्लोबल करियर्स. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्विंडी एंड मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर अर्ज टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स इन जापान टू एक्सपीरियंस इट्स वर्क, culture and lifestyle. The founder, CEO of Talendi by Tech Japan, announced that Japan aims to hire 50,000 Indian students over the next 5 years. The visit was part of the India-Japan Talent Bridge Program, a key initiative by Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry.
अब दिल्ली की खबर. पुनर्वास महानिदेशालय DGR नई दिल्ली के शंकर विहार सैन्य स्टेशन के अरावली सभागार में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के पूर्व अधिकारियों के लिए विशेष रूप से रोजगार मेला आयोजित करेगा. पूर्व सैनिकों और नियोक्ताओं के लिए पंजीकरण निशुल्क है. रोजगार मेला रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में आईटी, लॉजिस्टिक्स, प्रशासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी अधिकारी और अग्रणी नियोक्ता शामिल होंगे. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस कार्यक्रम में नियोक्ताओं को अनुभवी पेशेवरों के साथ मिलने का अवसर प्राप्त होगा. दिल्ली की एक और खबर. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान दिल्ली की सभी जिला अदालतों और उच्च न्यायालय में लोक अदालत आयोजित की जाएंगी. इसमें 31 मई तक किए गए ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा, जिसमें नागरिकों को ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए चालान की कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस पहचान पत्र, समन या नोटिस की कॉपी और चालान भुगतान की पुरानी रसीद जैसे जरूरी दस्तावेज लाना अनिवार्य है.
मूविंग ऑन टू बेंगलुरु मेट्रो. मनोज, बहुत अच्छी खबर है जहां पे, क्योंकि गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है वो बहुत ही इको फ्रेंडली तरीके से मनाया जा रहा है. सो लेट्स हियर फ्रॉम बेंगलुरु मेट्रो व्हाट वी हैव. गणेश चतुर्थी फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड विद फर्वर एज डेवोटीज थ्रॉंग टेम्पल्स एंड कम्युनिटी पंडाल्स अक्रॉस बेंगलुरु. लॉन्ग क्यूज वर सीन आउटसाइड प्रोमिनेंट गणेशा टेम्पल्स वेयर पीपल ऑफर्ड प्रेयर्स टू लॉर्ड गणेश, ऑफर्ड फ्लावर्स एंड कोकोनट्स. द गणेशा पंडाल्स ऑर्गेनाइज्ड कल्चरल प्रोग्राम्स एंड प्लेड डिवोशनल सॉन्ग्स. मेनी डेवोटीज प्रेफर्ड इको फ्रेंडली कलरलेस क्ले आइडल्स ऑफ गणेशा इंस्टेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस आइडल्स coated with chemical paints harmful to the environment and water bodies. The Bruhat Bengaluru Mahanagra Palike has made elaborate arrangements for the immersion of the Ganesha idols. It has arranged water tanks besides 41 lakes for the devotees to immerse their idols. To ensure safety at the lakeside tanks, proper barricades are installed, trained swimmers and lifeguards are deputed, along with CCTV, proper lighting and shelters. These facilities will be provided till September 7th.
अब महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा महाराष्ट्र फिल्म रंगमंच और सांस्कृतिक विकास निगम के सहयोग से कल से एक रील प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य लघु वीडियो के माध्यम से राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना है। प्रतिभागी 7 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण और अपनी रील अपलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र की एक और खबर
जी।
भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर कल मुंबई के राजभवन स्थित राज्यपाल आवास में भगवान गणेश की पूजा और आरती की। राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी भी राज्यपाल के साथ आरती में शामिल हुए।
जी बिल्कुल। एंड लेट्स गो टू हैदराबाद नाउ। इन तेलंगाना एक्सट्रीमली हैवी रेन बैटर्ड कामारेड्डी, मेडक, निर्मल डिस्ट्रिक्ट्स, व्हाइल मेनी अदर एरियाज अक्रॉस द स्टेट रिसीव्ड हैवी रेनफॉल। सेवरल विलेजेस हैव बीन इनंडेटेड व्हाइल टाउन्स एंड सिटीज विटनेस फ्लडिंग एज स्ट्रीम्स एंड लेक्स आर ओवरफ्लोइंग। मेडक, कामारेड्डी एंड निर्मल हैव बीन द वर्स्ट हिट विद अरगोंडा इन कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डिंग द हाइएस्ट रेनफॉल ऑफ 43.1 centimeters till this morning at 5 a.m. The national and state disaster relief teams have rescued over 1,000 persons in Kamareddy districts when they were stuck in flood water. The state government has appointed special officers to the worst hit districts to take necessary relief activities at the ground level. Meanwhile, Chief Minister A. Revanth Reddy will be conducting an aerial survey of the rain-hit areas later today. Meanwhile, Met officials warned of heavy and very heavy rains likely at some places today and tomorrow under the influence of the low-pressure area in the Bay of Bengal.
Ab Kolkata, Pashchim Bengal ki khabar. Pashchim Bengal sarkar ne Kolkata mein rooftop restaurant par प्रतिबंध लगा दिया है। नगर और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने कल मीडिया को इसकी जानकारी दी। उनकी अध्यक्षता में कल अग्निशमन आपातकालीन सेवा पर एक बैठक हुई। बैठक में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु, आपदा प्रबंधन मंत्री जावेद अहमद खान, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सरकार ने रेस्तरा और होटलों की रूफटॉप गतिविधियों को केवल 50% क्षेत्र में ही अनुमति देने का निर्णय लिया है। आवश्यक अनुमति और संबंधित कार्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग से लिए जा सकते हैं। रूफटॉप रेस्तरा की सीढ़ियां अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। ये और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली के मौसम का हाल। दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में बादल छाए रहने तथा एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और
अब यस मनोज, आई वाज कमिंग टू द अदर थ्री मेट्रोज जहां पे सिमिलर सिचुएशन कंडीशंस हमें दिखाई दे रही हैं बिकॉज ऑफ द मॉनसून। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ थंडरस्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 27 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। And Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 28 अगस्त है।
And today in the year 1600 the Mughals captured Ahmednagar.
1904 में आज ही के दिन कोलकाता से बैरकपुर तक प्रथम कार रैली का आयोजन हुआ।
1986 on this day, that is the 28th of August, Bhagyashree Sathe became the first Indian woman to achieve the Grandmaster title in chess.
1972 में आज ही के दिन साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण बिल पारित किया गया।
In 1976 on this day, second World Hindi Conference was held in Mauritius, and in 1992, Sri Lankan spin bowler Muthiah Muralidharan began his Test career against Australia on this day.
1999 में आज ही के दिन मेजर समीर कोतवाल असम में उग्रवादियों के एक गुट के साथ लड़ाई में शहीद हो गए।
And on this day, 28th of August in 2018, Manjeet Singh won the gold medal for India in the men's 800 meters race at the Jakarta Asian Games.
2008 में आज ही के दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने 1999 और 2000 के सभी नोटों को प्रचलन से हटाने का निर्णय लिया। और 2008 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिहार में आए बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। 2008 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मैगजीन फोर्ब्स ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
And today we are remembering John Marcellus Houston, who was an American film director, screenwriter, and actor. He wrote the screenplays for most of the 37 feature films he directed, many of which are today considered classics. He received numerous accolades, including 2 Academy Awards and 3 Golden Globe Awards. और हम उनके बारे में बहुत कुछ हम उनकी movies के बारे में बता सकते हैं. He voiced the wizard Gandalf in The Hobbit in 1977. He had such an amazing voice. Here we are going to listen to John Huston's amazing voice in the movie The Cardinal 1963.
Did you ever see this ring before?
Yes, it used to be mine.
Where did you get it?
It was given to me.
By whom?
By a friend. Where did you get the ring, Your Eminence?
Your fence, I believe you say in the underworld, was pinched. One of the items recovered was this ring. The police thought it might have been stolen from a bishop. But the Caragusian twins claimed they bought it from one Father Fermoil. Of course, we've never had a priest working with the mafia before, but I suppose during your stay in Rome, you made many interesting contacts.
Well, I had no choice, Your Eminence. I had to work my way through the seminary selling opium in St. Peter's Square.
आज पुण्यतिथि है जय सिंह अथवा मिर्जा राजा जय सिंह अथवा जय सिंह प्रथम की। उनका जन्म 15 जुलाई 1611 को आमेर में हुआ था। वे आमेर के राजा तथा मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति थे। वे राजा भाव सिंह के पुत्र थे, जिन्होंने 1614 से 1621 तक शासन किया। शाहजहां ने अप्रैल 1639 ईस्वी में जय सिंह को रावलपिंडी बुलाकर मिर्जा राजा की पदवी दी थी। ये पदवी उनके दादा मान सिंह को भी अकबर से मिली थी।
Today is the birthday of David Andrew Leo Fincher, who is an American film director, often described as one of the most preeminent directors of his generation. His films have collectively grossed over $2.1 billion worldwide and received numerous accolades, including 3 nominations for Academy Award for Best Director. He has also received 4 Primetime Emmy Awards, 2 Grammy Awards, a BAFTA Award, and a Golden Globe. And I will not say much about him, Manoj. We will let the man speak for himself. And through a collection of interviews from throughout his career, Manoj, humne thoda sa nikalne ki koshish kari hai, where Fincher is guiding us through some of the strongest characteristics of his directing style. Toh wo apne baare mein bata rahe hain yahan pe ki wo kis tarah movies direct karte hain.
Cinema is an inherently risky and imperfect and emotional medium. A group of people are sitting in the dark and they've given you access to their brains through their eyes and their ears for 2 hours, 2.5 hours. That's a big responsibility, you know, and you have to be thoughtful about it. Like John Doe, as morally repellent as he is, he's got a point.
We see a deadly sin on every street corner, in every home, and we tolerate it. We tolerate it because it's common. It's trivial. We tolerate it morning, noon, and night.
and you're given a very, very finite amount of patience that the audience has for you to get those ideas across and thrill people with what your intention is.
आज जयंती है विलायत खां की। उनका जन्म 28 अगस्त 1928 को बंगाल में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध सितार वादक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ख्याति प्राप्त की थी। उस्ताद विलायत खां की पिछली कई पुश्तें सितार वादन से जुड़ी रही थी। उनके पिता इनायत हुसैन खां से पहले उस्ताद इमदाद हुसैन खां भी जाने माने सितार वादक थे।
Today is the birth anniversary of Abida Sultan, who a princess of the princely state of Bhopal. Abida Sultan had the distinction of being the first woman pilot of India, and she got her flying license on January 25th, 1942. At a very young age, Abida Sultan had become proficient in driving and shooting animals like horses, pet cheetah, besides car driving under the discipline of her grandmother. And in those days, Manoj, she used to drive a car without a mask. And Abida Sultan, who played an active role in the Muslim politics of the subcontinent, also held the responsibility of the chairman and chief secretary of her father, Hamidullah Khan's cabinet. And today is also the birthday of Thomas Jacob, or Jack Black, who is an American actor, comedian and musician. He is known for roles in family and comedy films, in addition to his voice work in animated films. Aur yahan par hum baat kar rahe hain the voice behind the most beautiful panda, Kung Fu Panda. So let's listen into Jack Black.
I'm going to do something I never thought I'd be able to do. I'm going to teach Kung Fu.
You're not thinking straight.
I am.
I've seen Kai. I've seen what he can do.
Yeah, well, he hasn't seen what I can do.
Because he can only be stopped by a master of chi.
Oh, again with a chi. Chi this, chi that.
Pandas don't walk. We roll.
आज जयंती है कैप्टन अनुज नैयर की। उनका जन्म 28 अगस्त 1975 को दिल्ली में हुआ था। वे भारतीय सैन्य अधिकारी थे। वे 17 जाट रेजिमेंट के भारतीय सेना के अधिकारी थे, जिन्हें करगिल युद्ध में अभियानों के दौरान युद्ध में अनुकरणीय वीरता के लिए मरणोपरांत 1999 में भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को
सुखन की शम्मा जलाओ, बहुत उदास है रात, नवाए मीर सुनाओ, बहुत उदास है रात, कोई कहे ये ख्यालों और ख्वाबों से, दिलों से दूर न जाओ, बहुत उदास है रात, पड़े हो धुंधली फिजाओं में मुंह लपेटे हुए, सितारों सामने आओ, बहुत उदास है रात। ये रचना थी फिराक गोरखपुरी की। आज जयंती है फिराक गोरखपुरी की। उनका वास्तविक नाम रघुपति सहाय है। उनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्धि प्राप्त और उर्दू के माने हुए शायर थे। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
Today is the birthday of Elaine Regina Shania Twain, who is a Canadian singer-songwriter. She has sold over 100 million records, making her one of the best-selling music artists of all time and the best-selling female artist in country music history. She has received several titles, including the Queen of Country Pop. और अगर हम उनकी सेकेंड स्टूडियो एल्बम की बात करें, द वुमेन इन मी, विच ब्रॉट हर वाइड स्प्रेड सक्सेस, और उसी का गाना हम यहाँ पर सुन लेते हैं।
आज जन्मदिन है दीपक तिजोरी का। वे एक भारतीय फिल्म निर्देशक और अभिनेता हैं, जो बॉलीवुड और गुजराती फिल्मों में काम करते हैं। वे आशिकी, खिलाड़ी, जो जीता वही सिकंदर, कभी हाँ कभी ना, गुलाम और बादशाह में अपनी सहायक भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं।
आपको देखकर छा गया क्या सुर,
आज जन्मदिन है अभिनेता सुमन का। वे दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ज्यादातर तेलुगु और तमिल फिल्मों में मुख्य और सहायक भूमिकाएं निभाई। और अब समय है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार, नमस्कार।